स्वयं भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा स्वरूप शक्ति लादिनी वृषभानु नंदिनी श्री राधा जी की, क्योंकि समस्त सर्वशक्ति बड़ी असी समस्त शक्तियों में सर्वश्रेष्ठ है। राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, कृष्ण पर ब्रह्म वे पूर्ण शक्तिमान है और राधा जी पूर्ण शक्ति है। यह परिपूर्णतम श्री कृष्ण की परिपूर्णतम स्वरूप शक्ति लादिनी श्री राधा जी है, जिनसे बढ़कर और कोई शक्ति का परिचय यह प्रकाश आज तक नहीं हुआ है, न किसी शास्त्रों में वर्णन है, जो कि वृषभानंद ने राधा जी का परिचय वेदों से लेकर के उपनिषद पुराण इतिहास सभी शास्त्रों में वर्णन हुआ है। जैसे कि आज गुरु जी ने वर्णन किया था राधा उपनिषद में, ऐसा वर्णन होता है कृष्णेन राधते इति राधा, कृष्ण जिनकी आराधना किया करते हैं वे हैं श्री राधा। और जयते संजीवनी निकुंज देवी, श्री प्रभुदानंद सरस्वती पाद के वचन में जयते संजीवनी निकुंज देवी, निकुंज वन की अधिष्ठात्री देवी संजीवनी औषधि, कृष्ण के मूर्छा इत्यादि हो जाने पर उनकी मूर्छा छुड़ाने में किसी भी गोपी का या किसी भी शक्ति का सामर्थ्य नहीं जितना कि राधा जी को है, एकमात्र राधा जी ही छुड़ा सकती है। तो इस प्रकार उपनिषद में जब देखा जा रहा है कि कृष्ण जिनकी आराधना करते हैं वे हैं राधा, और राधा जी के साथ माधव, माधव के साथ राधिका, इस प्रकार राधस, राधस शब्द के द्वारा ऋग्वेद में भी वर्णन हुआ है। अभी दो चार दिन पहले एक पेपर में आया था राधा जी के विषय में लिखा है उसमें, और ऋग्वेद के मंत्रों को लिखा है। ऐसे तो ऋग्वेद के 250 मंत्रों में जो कि राधा कृष्ण की लीलाओं का भी वर्णन हुआ है हमारे प्राचीन टीकाकारों के मत में देखा जाता है और उनमें पाया जाता है। इस प्रकार राधा माधव की, राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन वेदों से लेकर के वेदांत, और वेदांत से लेकर के पुराण, पुराणों में तो वर्णन है ही, सर्वत्र उनका वर्णन हुआ है, पुराणों में इतिहास में शास्त्रों में सर्वत्र राधा जी का वर्णन होता है। विशेषकर आगम शास्त्र जो शिव शास्त्र है, शिव जी ने जितना भी वर्णन किया है पार्वती देवी को, सब कुछ राधा जी के विषय में वर्णन किया है, राधा कृष्ण की मधुर लीलाओं का वर्णन है, अष्टकालीय लीलाओं का वर्णन सर्वप्रथम श्री शिव जी ने किया है। इस प्रकार राधा जी को देखा जाए कि शास्त्रों में सर्वत्र तो पाए जाते हैं, उधर श्री चैतन्य चरितामृत में श्री कविराज गोस्वामी पाद सबका सार संकलन करते हुए कहते हैं कि बृहद गौतम या तंत्र में जैसे, और चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि जितनी भी शक्तियां हैं ब्रज में, जितनी गोपियां हैं सभी राधा जी के प्रकाश हैं, और लक्ष्मियां द्वारका की महिषियां सभी राधा जी मूल अंश ने राधा के ही प्रकाश हैं, कोई अंश और कोई कला के रूप में है, जैसे भगवान के सभी अवतार कोई अंश कोई कला के रूप में है, ऐसे जितने भी शक्तियां हैं, जितनी देवियां हैं, लक्ष्मियां हैं, महिषियां हैं, सभी राधा जी के ही प्रकाश हैं। इस प्रकार और भी कहते हैं गोविंद नंदिनी राधा, गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वसकांत, गोविंद सर्वस्य कृष्णकांत शिरोमणि। वृषभानंदिनी राधा जी क्या है, गोविंद नंदिनी राधा, गोविंद मोहिनी, जो गोविंद को सदा सर्वदा आनंदित करती हैं, गोविंद के मन को मोहन करने वाली और गोविंद के प्राण सर्वस्व कृष्ण कांताओं में जो सर्व शिरोमणि स्वरूपा वो है वृषभन नंदने सिद्धार्था जी। और भी वर्णन किया है देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति स्वमोहिनी परा। बृहद गौतमीय तंत्र के अनुसार चैतन्य चरितामृत में श्री कविराज गोस्वामी पाद ने वर्णन किया कि देवी दोत्माना परमा सुंदरी कृष्ण क्रीड़ा वसती नगरी। दोत्माना परमा सुंदरी राधा जी जैसी ऐसी कोई सुंदरी विश्व जगत में कोई नहीं हुआ है, क्योंकि समस्त संसार में एक उदाहरण है सर्वश्रेष्ठ सुंदरी कौन है संपूर्ण विश्व जगत वैकुंठ जगत में एकमात्र लक्ष्मी जी सर्वश्रेष्ठ सुंदरी है संसार जगत ब्रह्मांड और वैकुंठ जगत के अंदर में। परंतु ऐसी लक्ष्मी जी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी वर्णन करते हैं कि लक्ष्मी जदंगी कमलस्य नखांचलस्य बिंदुम अपि नार्हति लब्धुम इसि। लक्ष्मी जी राधा जी के चरण कमल के नखों के अग्रभाग में जो सौंदर्य की छटाएं हैं उस छटा का एक कण भी लक्ष्मी जी प्राप्त नहीं कर पाई तब शोभन नंदिनी राधा जी कैसी सुंदरी होंगी, ये तो कोई अंदाजा करना भी संभव नहीं और कहना भी संभव नहीं। वो जानते हैं कृष्णचंद्र स्वयं कि राधा जी कितनी सुंदरी हैं, जिनको देख करके वे स्वयं मोहित हो जाते हैं मूर्छित भी हो जाते हैं। इसलिए उस सौंदर्य का अनुभव कृष्ण को ही पता है। और हमारे गोस्वामी पादों ने इस प्रकार वर्णन करते हुए कहा देवी दोत्माना परमा सुंदरी कृष्ण के जितने भी लीलाएं हैं सभी वृषभन नंदिनी राधा जी के कारण ही हैं। क्यों? कृष्ण किसी के वशीभूत नहीं होते हैं। किसके वशीभूत होते हैं? भक्ति के और प्रेम के वशीभूत होते हैं। तो भक्ति के द्वारा वशीभूत होते हैं वेदांत में भी वर्णन हुआ है भक्ति वशः पुरुषः, पुरुष भगवान श्री हरि भक्ति के वशीभूत होते हैं। इसलिए भक्ति स्वरूपिणी कौन है? भक्ति के स्वरूपिणी राधा जी है, क्योंकि प्रेम का सार भाव, भाव का सार महाभाव, महाभाव स्वरूप श्री राधा ठाकुरानी, महाभाव की मूर्ति है वृषभन नंदिनी राधा जी। कृष्ण जो स्वयं रसोपीश्वर है वेदांत में, जो स्वयं रस स्वरूप है और रस स्वरूप हो करके वे रस का आस्वादन करते हैं। रस के आस्वादन के लिए उनके सभी परिकर और उनकी सारी लीलाएं हैं। और रस की जो चमत्कारिता है वो वृषभन नंदिनी श्री राधा जी है। इसलिए रस की चमत्कारिता किसमें सर्वाधिक रूप में प्रकाशित है? और जितने भी हैं शिल रूपों को स्वामी पाद वर्णन करते हैं, अरे कोई तालाब है तो कोई कुआ है और कोई सरोवर है, कोई झील भी है और कोई नदी तक है, पर समुद्र तो अपने समुद्र में ही समुद्र तो विराजमान है, समुद्र की कोई तुलना कर ही नहीं सकती और न कोई उनकी प्रतिस्पर्धा कर सकती है। तालाब का पानी चाहे समुद्र के साथ प्रतिस्पर्धा करे कर सकता है? कदापि संभव नहीं। तो महाभाव स्वरूपेयम् गुणैरतिर्वरीयसि वृषभन नंदिनी राधा जी क्या है कि महाभाव स्वरूप, ये महाभाव स्वरूप दूसरे किसी में कहां है। भले ही कोई उनके गुणों को कुछ प्राप्त कर ले, कुछ अंशों को प्राप्त कर ले, परंतु संपूर्ण रूप में तो नहीं। महाभाव स्वरूप एकमात्र वृषभन नंदिनी राधा जी। और गुणों में भी जिनके अनंत कल्याण गुण वर्णन हुआ है, और ऐसे ऐसे गुण हैं जिन गुणों के द्वारा कृष्ण स्वयं वशीभूत हो जाया करते हैं। विशेषकर ये भी कहा गया है गंधन मादितो माधव, माधव स्वयं श्री कृष्ण राधा जी के अंग गंध के द्वारा उन्मादित हो जाया करते हैं। अंगगंध में क्या है? जैसे फूलों का आप गंध सुनते हैं या हम लोग देखते हैं, फूलों से जैसे एक स्वाभाविक गंध आता है, सुगंध आता है, ऐसे संसार का जितने भी सुगंध हैं, सबका सार क्या है? वृषभ नंदिनी राधा जी और कृष्णचंद्र, उनके अंग से सभी गंध आ रहे हैं। तो गंधर्वादिव स्वाभाविक रूप से अंग गंध के द्वारा इतने प्रकार से सुशोभित है, माधव श्री कृष्ण स्वयं उन्वादित हो जाया करते हैं। और ऐसे गुण हैं जिन गुणों के द्वारा कृष्ण उनके वशीभूत हो गए हैं और राधा जी ने अपने गुणों के द्वारा बांध लिया है। इसलिए गुणई रति विवरी असी, प्रेम की पराकाष्ठा, एक तो प्रेम की मूर्ति, प्रेम का प्रेम की स्वरूप है। इसलिए शिवरम कव्यालु स्वामी पाद ने यह कहा है कि राधा जी जो है वे कोई साधारण सामान्य नारी है क्या? उनका कोई पांचवती दिए है क्या? ये भी तो नहीं है। श्री कृष्ण जैसे सच्चिदानंद विग्रह सचिद आनंद का मूर्तिमान स्वरूप है, उनका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता, अपराजित सच्चिदानंद स्वरूप, ऐसे राधा जी जो है अपराजित सच्चिदानंद स्वरूप है। तो राधा जी का वर्णन जितने भी शास्त्रों में कहा गया है, ब्रह्म संहिता का आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी, वो आनंद चिन्मय रस की स्वरूप है। और उसी का ही वर्णन करते हुए कविराज गोस्वामी बात कह रहे हैं कि राधा जी क्या है, वह लादनी है और आनंद चिन्मय रस की मूर्ति है। जैसे कोई चीनी का एक खिलौना हो तो ऊपर नीचे आगे पीछे बाहर भीतर सर्वत्र चीनी ही चीनी मिलेगा, संपूर्ण ही मीठा है। तो राधा जी जो है उनका कोई हड्डी चमड़ा मांस मांस का कोई शरीर है क्या? ऐसे तो हमारे जैसे कोई भौतिक शरीर वाले तो नहीं है, वो आनंद स्वरूप है, आनंद चिन्मय रस स्वरूप, महाभाव स्वरूप, महाभाव की मूर्ति और प्रेम का सारा वैचित्र भूमि में है। इसलिए कविराज गोस्वामी पाद ने श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के प्रेमाम्भोज मकरंद स्तोत्र से इसकी व्याख्या देते हुए चैतन्य चरितामृत में इसका भी सद्वर्णन कर दिया कि राधा जी महाभाव स्वरूप है, अखंड रस बल्लवा है और वो तीन रूप में है। राधा जी को वेदांत में ब्रह्म सूत्र गोविंद भाष्य में वहां पर दिखाया कि राधा जी तीन स्वरूप में है। कैसे? कि एक स्वरूप में तो वे मंत्र के रूप में है, मंत्र के जितने पावर हैं, शक्ति हैं, सब राधा जी हैं, इसलिए जितने भी मंत्र हैं सब राधा जी का ही प्रकाश है। और दूसरे जो कि कृष्ण के अंगों में, कृष्ण के स्वरूप में जो शक्ति है, एनर्जी है कृष्ण के शरीर में, वो एनर्जी कौन है? राधा जी है कृष्ण के शरीर में। और स्वयं कृष्ण को आह्लादित करने के लिए, उनकी सेवा के लिए, आनंदित करने के लिए स्वयं प्रकृति कुललाम वृषभानुराजनंदिनी वेदांत में कहा है कि प्रकृति कुललाम वृषभानुराजनंदिनी वृषभानु कुमारी, जो कि राधा जी के स्वरूप में, इस प्रकार वे तीन स्वरूप में। और कृष्ण के आह्लादित आते ही नाम लाते हैं, कृष्ण को जो स्वयं आनंदित करती है, इसलिए उनका नाम हो गया लादनी। और कृष्ण भी भक्तों को लादनी द्वारा करे भक्त रे प्रेम आस्वादन, जो कि भक्तों को प्रेम आस्वादन कराने के लिए और प्रेम बढ़ाने के लिए स्वयं कृष्ण क्या करते हैं? लादनी द्वारा सबको अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं। उनकी जो कृपा है वो क्या है? कृपा करुणा, जो कि राधा जी है। कि इसलिए विश्वानंदिनी राधा जी करुणाम कुरुमयी, श्री रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि वे करुणा की मूर्ति है, दया की मूर्ति है, भाव की मूर्ति है। करुणया विद्रवत देहा, करुणा के द्वारा जिनका शरीर विगलित है, ऐसे करुणा की मूर्ति वृषभानंदिनी राधा जी है। कृष्ण क्या करते हैं संसार में भक्तों पर जिन पर कृपा करते हैं वो करुणा शक्ति जो है कृपा शक्ति बुलाना ही है। इसलिए स्वयं कृष्ण ने क्या किया उस करुणामयी राधा जी का स्वरूप लेकर के स्वयं गौरहरि बन करके आए उस प्रेम का आस्वादन करने के लिए और बिना राधा जी के दर्शन किए उनकी करुणा को प्राप्त किए जीव कभी प्रेम लाभ नहीं कर सकते हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में उस करुणा के भंडार को विचार करके दान किया। वो करुणा क्या है राधा जी है जो स्वयं करुणामयी है। इसलिए कहते हैं लाडली दूसरी और राधा जी क्या करती है श्याम के कराए श्याम रस मधुपान श्याम सुंदर श्री कृष्ण को श्याम रस मधु उन्नत उज्जवल मधुर रस श्रृंगार रस तो श्रृंगार रस का जो पान कराती है केवल श्रृंगार रस ही नहीं है श्रृंगार रस के साथ में श्रीवर रूप गोस्वामी जी ने एक अद्भुत भाव को जोड़ दिया जो राधा जी का विश्लेषण करते हुए राधा जी जो महाभाव स्वरूप है उनका वर्णन कर दिया। अभी अभी श्री रूप गोस्वामी पाद के विरह तिथि पर बड़े बड़े विद्वानों ने प्रवचन दिया था उसमें विद्वानों का जो वर्णन था उसमें वेदों कह रहे थे कि जितने भी प्राचीन कवियों से लेकर के बड़े बड़े विद्वान हुए हैं ये सभी जितना भी ग्रंथ का प्रसाहित वर्णन किए हैं उसमें भाव को और श्रृंगार रस को दोनों को अलग अलग किया है परंतु हमारे श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने क्या किया कि राधा जी के अलौकिक भावों को श्रृंगार रस के साथ में जोड़ दी दोनों को एकात्म करते हुए कृष्ण ने एक और जहां रस का आस्वादन किया वैसे भाव का भी आस्वादन किया भाव और रस दोनों को एकात्म रूप में दिखाया गया है तो इसलिए उन्नत उज्जवल श्रृंगार रस मधुर रस को पान कराने वाले वृषभानंदिनी राधा जी हैं जो कि प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव अब इसमें श्री रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं व्रत की गोपियों में कहीं भाव तक ही प्रकाश हो जाता है और राधा जी के जो अंतरंग जन है उनमें महाभाव के कुछ अंश तक उनमें स्वजातीय भाव में आ जाता है औरों में तो ये समस्त संभव ही नहीं है वात्सल्य रस में कहीं माता यशोदा को भी भाव तक ही प्राप्ति है उससे आगे का वर्णन नहीं दिखा सकते परंतु ससंवित दशा जागृत अस्पष्ट वृत्ति युक्त जो भावों की चमत्कारिता दिखलाई गई और आगे चल करके जो महाभाव की स्थिति है ये तो विश्वभानंदिनी राधा जी में है और उससे आगे जो भावों की चमत्कारिता जिसमें मोहन मादन चित्र जल्प दिव्य उन्माद ये सभी भावों की जो पराकाष्ठा है ये तो अन्यत्र नहीं देखने को मिलेगा ही नहीं इसलिए कृष्ण इन सभी रसों को आस्वादन करते हुए वे आनंदित होते हैं और राधा जी इन भावों को आस्वादन कराने के लिए वे उन्नत उज्जवल रस स्वरूप वो श्याम को कराए श्याम रस मधुपान राधा जी श्याम सुंदर श्री कृष्ण को श्याम रस मधुर पान कराती हैं इसलिए यहाँ पर वर्णन हुआ है देवी जो कि निकुंज वन की अधिष्ठात्री देवी श्री प्रभुदानंद सरस्वती पाद कहते हैं कि जिनके चरणों में स्वयं श्री कृष्ण जय श्री राधे कह करके पुष्पांजलि समर्पण कर रहे हैं ऐसे जिनके चरणों में सिर झुका रहे हैं जिनको मनाने के लिए हजारों प्रयास कर रहे हैं और कभी जयदेव जी ने तो यह भी वर्णन किया है कि राधा जी जब मान करके लूट गई तब उस समय उन्होंने ये कहा हरि हरि जाय माधव जाय केशव जाय तब वादन हे हरी चुराने वाले अब तुम जाओ, अब हमारा मन चुराना नहीं है, अब तुम जाओ। हरि हरि जाहि माधव जाहि। हे माधव, माधव का अर्थ होता है रमापति, माँ जाने लक्ष्मी, धर्म माने पति। तो माधव, रमापति, लक्ष्मी पति, उन लक्ष्मियों के चित्त को, मन को हरण करना हमारे पास नहीं। और माधव का होता है राधा जी के जो प्राण प्रियतर हो, और राधा जी स्वयं कह रही है हे माधव तुम जाओ, हे केशव तुम जाओ। रास में जिनका केश प्रसाद करके जिनको मनाया था, उस माधव को, केशव के ये उनके पास में जाओ, उस मालिनी को मनाओ, यहाँ हमें मनाना नहीं है। इस प्रकार राधा जी स्वयं के और स्वयं भाव, स्वयं के भाव को स्वयं ही वर्णन करती हुई कह रही है। तो इस प्रकार का दिव्य उन्माद में ये सभी भाव का जो वर्णन हुआ हुआ है या हो रहा है, इस प्रकार राधा जी कृष्ण को वशीभूत कर लेती है। जो कि और भी कहा है कि कृष्ण तो वशीभूत होते हैं, भक्तों के अधीन बनते हैं, प्रेम के अधीन बनते हैं, प्रेम के ऋणी भी बन जाते हैं, वशता भी इसी कार्य करते हैं। जिनका जितना प्रेम है उनकी उतनी वशता को उन्होंने स्वीकार किया है। सर्वाधिक प्रेम वशता किसमें है? और यदि देखा जाए चंद्रावली और द्वारका की रुक्मिणी सप्तभामा आदि और व्रज की जितनी भी गोपियां हैं और जितने जो कुछ भी हैं, सर्वाधिक रूप में सबसे अधिक वशीकारिता एकमात्र राधा जी में है, जो और किसी में नहीं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को 96 प्रकार नायकत्व लक्षण भी दिखाया, श्री रूप गोस्वामी पाद वर्णन किए कि कृष्ण जो है 96 प्रकार नायक के लक्षणों से युक्त और विशेषकर वेधीर ललित नायक। क्यों? निश्चिंत नवतरुण विदग्ध परिहास विशारद प्राय प्रेयसी वसर। उस दरवाजे को बंद करवाएगा, सब दरवाजे बंद करते तुम्हारे। तो प्राय प्रेयसी वसर धीर ललित इति उदीर्यते। कृष्ण हो जो है धीर ललित नायक है, जो कि निश्चिंत नवतरुण, निश्चिंत उनको किसी प्रकार कोई चिंता नहीं है। नंद बाबा ने उनको कोई काम नहीं दिया, ना कोई कार्यभार, कोई दायित्व उनको संभालने को दिया है। फिर भी वे सच्चंद बिहारी है, लीला बिहारी गोचारण नंद महाराज ने नहीं दिया, स्वेच्छा से लिया वन बिहारी के लिए, कीड़ा कौतुक के लिए उन्होंने बोले कि हम वन बिहारी करेंगे खेलेंगे। इसलिए उन्होंने गायों के पीछे चलते हैं और घूमते फिरते हैं, परंतु नंद बाबा ने उनको कोई भी ऐसे दायित्वशील कार्य उन्हें नहीं किया। फिर भी कोई असुरों को मारने के लिए उनको किसी प्रकार कोई परिश्रम, कोई चिंता भावना, कोई अस्त्र शस्त्र उठाना, कोई बृहद रूप प्रकाश करना, विशाल रूप दिखाना, या कोई अस्त्र शस्त्र धारण करते हुए मारना, ये सब कुछ भी नहीं। चुटकी बजाते खेल खेलते ही सारा खेल खत्म हो जाता है, सब असुर गिर जाते हैं, पछाड़ देते हैं। तो इस प्रकार निश्चिंत नव तरुण, नव किशोर नटवर, जो कि वे हमेशा नव किशोर नटवर है, नव किशोर नटवर गोपवेश बेणुकर कुंजवियर देख। तो नव किशोर नटवर गोपवेश बेणुकर ब्रजो, मेरे घर से माइक लिया, आलमारी में वो है स्पीकर, देखो नव किशोर नटवर गोपवेश बेणुकर।
करता था
नव किशोर नटवर गोपरीश बेरुंगा। कृष्ण जो है नव किशोर नटवर स्वरूप और प्राय प्रेयसी वसत प्राय करके जो राधा जी के वशभूत रहने वाले, इस प्रकार कृष्ण जो है जो हमेशा राधा जी की वशता को स्वीकार करते हैं। अतएव राधा जी की जैसी प्रेम वशता और किसी में नहीं पाया जाता है। अतएव सभी शास्त्रों में उनको सर्वश्रेष्ठ रूप में वर्णन किया है, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता। कृष्ण की समस्त प्रकार की इच्छा अभिलाषाओं को वे पूर्ण करती है, उनके जैसे कोई भी पूर्ण नहीं कर सकती। और औरों के अंदर में कुछ न कुछ अभिलाषा आ जाएगी, परंतु उनके अंदर कोई भी अपनी अभिलाषा नहीं। कृष्ण स्वरूप तात्पर्य है जो कि इस प्रकार निष्काम निस्वार्थ प्रेम की एकमात्र मूर्ति जो है वृषभानंदिनी राधा जी, जो कि कृष्णमयी कृष्ण जिनके बाहर भीतर कृष्ण में सदा सर्वदा जो आविष्ट है, सन्मोहिनी परा कृष्ण मनमोहिनी और सबके परा ठाकुरानी सर्वश्रेष्ठ वृषभानंदिनी श्री राधा जी है। इस प्रकार राधा जी के तत्व का वर्णन करते हुए श्री कविराज गोस्वामी पाद ने और भी दिखाया है कि राधा जी अपने अंगों में जितना भी आभूषण धारण करती है, ये सभी भावों के आभूषण है, भाव के प्रतीक रूप में इतनी भाव चमत्कारिता एकमात्र राधा के अतिरिक्त और किसी में नहीं पाया जाता है। इस प्रकार आज विश्वभरनंदिनी श्री राधा जी के चरणों में हम सतत पुष्पांजलि समर्पण करते हैं, जो कि गांधर्व है सर्व संगीत विद्या में सर्वश्रेष्ठ श्री दुर्वासा जी ने जिनको गांधर्व नाम से उनको वरदान दिया है। संगीत विद्या में जो पारदर्शी है, समस्त कला विद्याओं में स्वयं आचार्य स्वयं पंडिता न तो शिक्षिता। राधा जी कहीं किसी स्कूल कॉलेज में या किसी के पास कुछ सीखने को नहीं गई, जो समस्त कलाओं में पारदर्शी है। इस प्रकार विश्वभानंदिनी से राधा जी उनके चरणों में हम पुनः पुनः पुष्पांजलि समर्पण करते हैं। आज
अपना भारत भूल जाए, इसलिए ने सोनक आदि ऋषियों ने सुख गोस्वामी से पूछा, सुख गोस्वामी जी आपने अपने गुरु जी सुखदेव गोस्वामी से समस्त स्तुतियों के साथ वेदांत सूत्र उसके अप्रतिम भाष्य श्रीमद् भागवत का आद्योपांत अध्ययन किया अपने गुरु जी से और उनकी कृपा से आप समस्त शास्त्रों के विशारद में आप कृपा करके संक्षेप में बतलाइए कि मनुष्यों की आत्मा का कैसे कल्याण होगा, कैसे उनकी आत्मा सुप्रसन्न रहेगी। शरीर के लिए नहीं पूछा, हम शरीर नहीं है, ये तो हार्ड मान रक्त के साथ पैखाना की थैली है, इसके अंदर में जीवात्मा और परमात्मा है जो मनुष्य मनुष्य जन्म लेकर और उनकी उपलब्धि नहीं करता कि हमारे अंदर में मैं हूँ और भगवान कृष्ण है और दोनों में नित्य संबंध है, हम लोग उनके नित्य दास हैं। उनको भूल जाने से हमारी एक दुर्दशा हुई और कोटि कोटि जन्म से आवागमन के चक्कर में रोग दुख पीताप से तप्त हो गए। इसलिए मनुष्य जन्म देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, इस जन्म में भगवान का उन्होंने कहा आत्मा सुप्रसन्न कैसे होगी, इसके पुस्तक उन्होंने कहा सब एक काम करो कारो मनुष्य मात्र का ही नहीं प्राणी मात्र का परम धर्म है। क्या धर्म है? भगवान जो और भोक्षों से अधिक भगवान भगवान के चरणों में है, क्योंकि बिना किसी लौकिक कामना वासना कृष्ण के सेवा के अतिरिक्त और कोई कामना वासना के द्वारा नहीं और नित्य निरंतर कुतल्य धारावत अविच्छिन्न गति से भगवान के चरणों में लगी रहने वाली और कर्म ज्ञान इत्यादि के द्वारा ढकती है। ये भक्ति ही परम धर्म है, किसी से आत्मा संतोष स्वामी ने इसी को बताया और भी अच्छी तरह से अन्याभिलाषिता ज्ञान समझौते भक्ति क्या है, प्रणाम करने से नहीं होगा। ठाकुर जी के दरबार में गए और चौपटे पकड़ करके दबाने लगे, ठाकुर जी हमारा लड़का पास हो जाएगा तो एक आने का पैसे का प्रसाद बता, हमारे पति निरोग हो जाए, पति करते हमारा कारोबार चल जाएगा तो हम कुछ ठाकुर जी को प्रसाद करें, ये भक्ति शक्ति नहीं है, भक्ति से कोई संबंध नहीं है। भगवान की सेवा करते तो और कुछ न मांग और नित्य निरंतर ज्ञान और कर्म से जोर से ही भक्ति होती है, ऐसा बात नहीं। इसलिए तन मन और वचन की सारी चेष्टाएं, इसके अतिरिक्त भावना की जितनी चेष्टाएं हैं कृष्ण के लिए ही और वो भी हरि गुरु वैष्णव के अनुगत्य में हो, विशेष करके गुरु के अनुगत्य बिना नहीं हो सकता, वैष्णव के अनुगत्य उनके अनुगत्य में हो तो ये उत्तम भक्ति है। आरंभ होती है कहां से? सबसे निचले स्तर पे इसको श्रद्धा कहते हैं, समझो जो श्रद्धा किसको कहते हैं, तो प्रणाम करने से आदर करने से श्रद्धा नहीं होती, श्रद्धा उसको कहते हैं साधुओं का संग हो और उनके मुख से हरिकथा सुनकर कृष्ण की सेवा करने की वासना लालसा हृदय में जग जाए। और उसका बाहरी लक्षण क्या है? गुरु शास्त्र और कृष्ण के वचनों में दृढ़ विश्वास हो, कृष्ण का भजन करने से हमारे सारे कर्म हो गए, ऐसा विश्वास जिसके हृदय में हो ये पारमार्थिक। श्रद्धा होने के बाद भी चित्त भी स्थिर नहीं, तब श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि भगवान का गुणान बात करते 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 साधु गुरु वैष्णव के अनुगत में अनर्थ दूर हो जाने पर वह हृदय की पकड़े आगे पूरा श्रवण कीर्तन करने पर वह रुचि उत्पन्न होती है। रुचि उत्पन्न यदि भगवान के नाम लेने में, भगवान का भजन करने में, साधु गुरु वैष्णव की सेवा करने में, ठाकुर अर्चन में, ठाकुर की रसोई करने में, ठाकुर संबंधी किसी भी चीज में रुचि उत्पन्न हो गई, बहुत बड़ी और यही रुचि परिपक्व होने के बाद में आसक्ति होती है। यही आसक्ति भी फिर और भी परिपक्व होने पर तब ये भाव होता है यार, प्रति बड़ी दुर्लभ चीज है, साधारण चीज नहीं है। ये किसी परिभाषियों की सेवा के प्रति यदि लोग उत्पन्न हो जाए राजानुगा भक्ति के द्वारा, तब उसका और कृष्ण का स्मरण करते करते उनके भाव जब हृदय में संक्रमित होते हैं आपने वो कर सकते हैं। स्थायी भाव और उस स्थायी भाव पर आलंबन उद्दीपन विषय आश्रय इत्यादि मिलने से रस भक्ति रस होता है और भक्ति रस शांत दास सात सत्य बात्सल्य और भक्ति और यही मधुर भाव भी दो रूप प्रकार है। एक द्वारकापुरी में स्वकीय भाव और ब्रज में पार्थिव भाव। ये पार्थिव भाव ही सबसे श्रेष्ठ शास्त्रों का पार्थिव भाव होता है। ये भक्ति के तारतम्य से भक्त भी पांच प्रकार के माने हैं। एक शुद्ध भक्त ज्ञानी भक्त, एक ज्ञानी होता है एक ज्ञानी भक्त है समझो, जो भगवान का रूप नहीं मानता, गुण नहीं मानता, क्रिया नहीं मानते, वो निर्विशेष वादी मायावादी कहलाते हैं, वो भक्त नहीं है बल्कि भगवान का निरादर करने से अधोपति हो जाते हैं। और ज्ञानी भक्त प्रहलाद महाराज वो जानते हैं देखते हैं भगवान में सारा विश्व है और समस्त प्राणी में हमारे इष्ट देव भगवान की यह तत्व ज्ञान जिनमें है वो ज्ञानी भक्त, इनसे श्रेष्ठ शुद्ध भक्त बड़ी महाराज वो अपने प्रहलाद महाराज के इष्ट देव को भूख नहीं लगती, चलने में थकते नहीं, प्यास लगती नहीं, इसलिए प्रहलाद महाराज की क्या सेवा कर सकते, कोई सेवा कर नहीं कर सकते। और बड़ीश महाराज यद्यपि सिद्ध भक्त नहीं है जगत के, अभी भगवान के लिए हाथों से झाड़ू देते हैं मंदिर में खूब राजा होकर के, मन को कृष्ण के चिंतन में लगाते हैं, अपनी वाणी से भगवान की कथा बोलते हैं, कानों से भगवान की कथाएं सुनते हैं, सारी इंद्रियों को ही भगवान की सेवा करते हैं। इसलिए इतने भी श्रेष्ठ कौन है, प्रेमी भक्त तो प्रेम है जैसा भगवान, दिन रात भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा छोड़ करके एक सेकेंड वो नहीं रह सकते। और जहां जहां भगवान की कथा होगी, राम की कथा होगी, वहां किसी न किसी रूप में कोण के रूप में भी सबसे पीछे आकर के बड़े ध्यान से, और राम और सीता जी के बड़े प्रिय है, कैसी कैसी सेवाएं की है और इस दोहराने की बात है। उनसे भी श्रेष्ठ वृद्धि के सभा उद्भव जी है पांडव, प्रेम पर पांडव लोग अर्जुन तारक कृष्ण स्वयं हाथ में है, उनके घोड़ों का पैर दबाते हैं, अर्जुन कहते अकेले चलो रथ बीच में ले जाते हैं, अपनी बहन सुभद्रा जी के साथ ही कृष्ण के साथ में करते हैं, कृष्ण के सेवक बन जाते हैं, द्रौपदी को अपनी सखी मानते हैं, ये प्रेम से बसी। किंतु ये लोगों से भी अर्जुन ने भीष्म रूप देखा और देखते ही बात छोड़ दी, प्रभु मैंने आपको सखा कहा है, मित्र कहा है, मैंने श्री कृष्ण कहा है, आप हमारे इस अपराध को क्षमा करें, अब से ऐसा नहीं। इसलिए इनको कभी कभी भगवान का वो भाव उत्पन्न होता है मर्यादा में, जिससे कि वो शुद्ध रूप से भक्ति प्रेम नहीं कर सकते, और इनसे भी भक्त भाव है, इनको कहते हैं प्रेमात्मा, कृष्ण के अतिरिक्त वो रह नहीं सकते। कृष्ण के वो मंत्री है, सखा है, सेवक है, बंधु है, भाई है, और वो उद्धव जी इतने बड़े भक्त होकर के ब्रज में जाते हैं, तो नंद बाबा यशोदा का प्रेम देख करके एकदम स्तब्ध हो जाते हैं। इसकी कथा अभी आप लोग महाराज जी से सुन रही है, ब्रज में गए और नंद बाबा का देखा पाओ, यशोदा मैया को देखा पाओ, कृष्ण के बिना ब्रज में यह संकेत हो रहे, आंखों के जल बंद नहीं होते, अब यहां तक कि गायें घास नहीं चल, बछड़े पीछे ट्वेल ऑफ भक्ति नहीं मिलता, वायु नृत्य नहीं करते, बड़ी विचित्र निरंकुश वहां की दशा में, और उसमें भी नंद बाबा से यशोदा मैया का भी, क्योंकि कृष्ण के प्रति मैया यशोदा का नंद बाबा से भी अधिक प्रेम था, और उन लोगों से भी अधिक गोपियों का, उन गोपियों में भी सबसे अधिक श्रीमती राधिका जी का, इसी को हम लोग क्रमशः इसमें बताएंगे। अभी श्रीमान सिंह महाराज बोल रहे थे अपना विषय
समाप्त, माँ यशोदा ने कभी ऐसे सोचा, चाहे गर्गाचार्य ने कितनी बात कह दी है कि यो बालक पहले जन्म में कोई जन्म में ऐसे जन्म लिए हैं शुक्ल रक्त,
महाराज जी ने बतलाया यशोदा जी गधी मंथन कर रही और कृष्ण कैसे उनकी गोदी में आए, उसी समय में दूध उबल रहा था और कृष्ण को गोदी से उतार करके रखा, बैठो जिस कृष्ण को भूतना 60,000 हाथियों के बल वाली, अरे छोड़ो छोड़ो बहुत चेष्टा करके हटाने की चेष्टा नहीं, और यशोदा मैया ने एक ही हाथ से उसको बैठ, तो यशोदा मैया का कितना बल है ये समझो। दूसरा पर मानने को ऐसा नहीं है जो ऐसा करते बैठे हैं, यशोदा मैया तो इतना बल है। दूसरी बात, कृष्ण दूध पी रहे थे, पेट भरा नहीं था और भी पीना चाहते थे, यशोदा जी के इस तन में इतना दूध है कि विश्व ब्रह्मांड के आखिर समुद्र उससे निकला है, यशोदा मैया का तन का दूध कभी भी समाप्त नहीं होगा, और कृष्ण के पेट में ब्रह्मांड है, उनका पेट भी नहीं भरेगा, तो कृष्ण खा पीते रहेंगे दूध और उनका पेट भी नहीं भरा, तो लगातार चलता रहेगा, आग के ऊपर में गधी के तो दूध के फांड से वो दूध उखल करके गिर रहा है, उस जीवन से लाभ क्या है यदि हम कृष्ण की सेवा में नहीं लग सके। यशोदा मैया का दूध खत्म नहीं होगा, इनका पीना खत्म नहीं होगा, इसलिए हम चल रहे हैं। भक्त ऐसा ही सोचता है, यदि इस जीवन से भगवान की सेवा नहीं हुई, भक्ति नहीं हुई, तो ये जीवन बेकार है, इसलिए दूध उठन करके गिर रहा है, मैया यशोदा जी ने कहा नहीं, तुम घबराओ न, अपना दूध पिलाना बंद कर दिया, हमारे दूध से छेना कभी मक्खन ये सब तो नहीं हो सकता, तुम्हारे दूध से ही होगा, मैं अभी तुम्हारी रक्षा करके तुमको सेवा में लगाएगी। ये गुरु बड़े दयालु होते हैं, ये गुरु का कार्य है। यशोदा जी कैसे गुरु है, गुरु यही करते हैं, जीव संसार के विषयों में फंसा रहता है और कोई न कोई बहाना लगा करके जीवों को भगवान की तरफ में लगा देता है, ये गुरु की बड़ी कृपा है। हम लोगों को यहाँ आने की क्या जरूरत है, जरूर रोटी का कुछ प्रश्न होगा, रोटी नहीं मिलती होगी, इसलिए यहाँ है कि पैसा की कमी थी घर में, इसलिए कुछ भीख मांगने के लिए आप लोगों से हम लोग आए, इसलिए बुलाया नहीं तो भी आए, यही संतों का भाव है। हम लोग अनादि काल से जीवन आवागमन में पड़ रहे, सुकर कुकर चटे हुए तीन होंगे, इसलिए दया करके भगवान की कथा सुना करके परिणाम दे करके बस धार के पथ पर लगा देते हैं, जिससे कि जीवन सार्थक हो। इसी ये यशोदा मैया का ही कार्य, कृष्ण को बांधने चले अपने पहले केश में बंधन की रेशम की डोरी होती है अढ़ाई हाथ, कृष्ण की कमर तो केवल 12 अंगुल की।